नमस्कार, मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। मैं आपके लिए भारत का संविधान, यह पुस्तक जो कि दुर्गादास बसु द्वारा लिखित है, इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का दूसरा भाग की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। अगला शीर्षक है संसदीय रक्षोपाय। यह स्पष्ट है कि इस दुरुपयोग के विरोध कोई रक्षोपाय होना चाहिए। जहाँ तक अध्यादेश के गुणा अवगुणों का प्रश्न है, यदि सरकार अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करना चाहती है तो संसद को अध्यादेश का पुनरावलोकन करने का अवसर मिल जाता है। यदि सरकार को किसी अन्य प्रयोजन के लिए संसद को आहूत करना पड़ता है तो वह अध्यादेश का निर्मोदन करते हुए संकल्प पारित कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 123 के क्लोज नंबर 2 के क भाग में लिखी हुई है। किंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि किस प्रकार बिना निंदा या प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुए संसद सरकार को यह बता सके कि वह सरकार के विधेयक के स्थान पर अध्यादेश निकालने के आचरण का अनुमोदन नहीं करती है। लोकसभा ने नियम बनाकर यह अपेक्षा की है कि जब कभी सरकार किसी विधेयक से अध्यादेश को प्रस्थापित करेगी तो ऐसे विधेयक के साथ एक कथन होगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था। अध्यादेश का अनुमोदन करने वाले संकल्प का साधारण बहस होती है। सामान्यतया विपक्ष की ओर से अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला संकल्प प्रस्तुत किया जाता है। इसका पांचवा भाग है क्षमादान की शक्ति। लगभग सभी संविधान कार्यपालिका के प्रधान को ऐसे व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देते हैं जिनका किसी अपराध के लिए विचारण और दोष सिद्धि हुई है। कार्यपालिका को न्यायिक शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य यह है कि यदि कोई न्यायिक भूल हुई हो तो उसे सुधारा जा सके। न्यायिक प्रशासन की कोई भी मानवीय प्रणाली पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हो सकती है, यही इसका कारण है। केहर सिंह के बाद उच्चतम न्यायालय ने क्षमादान की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला, जो व्यक्ति राष्ट्रपति को क्षमा के लिए आवेदन करता है उसे राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। दूसरा, शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के विवेकाधीन है। न्यायालय मार्गदर्शन के सिद्धांत अधिकथित करने की आवश्यकता नहीं समझता। तीसरा, शक्ति का प्रयोग केंद्रीय सरकार की सलाह पर किया जाएगा। चौथा, राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय पर विचार करके उससे भिन्न मत अपना सकता है। पांचवा, राष्ट्रपति के निर्णय का न्यायालय पुनरावलोकन मारूराम के मामले में बताई गई सीमा में ही कर सकते हैं। जैसा मारूराम के मामले में बताया गया है, न्यायालय वही हस्तक्षेप कर सकेगा जहां राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 72 के उद्देश्यों से पूर्णतया असंगत है या तर्कहीन, मनमाना, विभेदकारी या असद्भावी है। यह ध्यान देने योग्य है कि जिसे हमने ऊपर क्षमादान की शक्ति कहा है उसमें एक ही प्रकार की अनेक शक्तियां हैं जिनका सुभिन्न महत्व और सुभिन्न विधिक परिणाम है। उदाहरणार्थ क्षमा, प्रविलंबन, विराम, निलंबन और लघुकरण। क्षमा के द्वारा अध्यादेश और दोष सिद्धि दोनों विखंडित हो जाते हैं और अपराधी सभी दंड और निरहर्ताओं से शुद्ध हो जाता है। लघुकरण में एक प्रकार के दंड के स्थान पर दूसरा उससे हल्का दंड आ जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दंडादेशों में से प्रत्येक का उसके ठीक बाद में आने वाले दंडादेश द्वारा लघुकरण किया जा सकता है। मृत्यु, निर्वासन, कठोर कारावास, सादा कारावास, जुर्माना। परिहार दंडादेश की प्रवृत्ति को प्रवर्तित किए बिना उसे घटाता है। उदाहरण के लिए, एक वर्ष के कारावास के दंडादेश को परिहार करके 6 मास का किया जा सकता है। विराम का अर्थ यह है कि किसी विशेष तथ्य को देखते हुए विहित शास्ति के स्थान पर कोई छोटा दंडादेश दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी स्त्री अपराधी का गर्भवती होना। प्रविलंबन का अर्थ है कि दंडादेश के निष्पादन को रोक दिया गया है। उदाहरण के लिए, क्षमा या लघुकरण की कार्यवाही में लंबित रहने के दौरान। अगला शीर्षक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की तुलना। भारत के संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 72 और 161 में के अधीन राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल दोनों को ही क्षमादान की शक्ति है। इसका तुलनात्मक अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। राष्ट्रपति के संदर्भ में, पहला, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश की बाबत क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रपति के संदर्भ में, जहां दंड या दंडादेश ऐसी विधि से विरुद्ध अपराध के लिए है जो ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां उपरोक्त शक्ति है। राज्यपाल के विषय में, ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध के संबंध में जो ऐसे विषय से संबंध है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राष्ट्रपति की शक्तियों के समान शक्तियां हैं। मृत्यु दंडादेश को छोड़कर, जिसके लिए आगे सुनिए। तीसरा है, राष्ट्रपति के संदर्भ में, उन सभी दशाओं में जहां दंडादेश मृत्यु दंड है, वहां उपरोक्त सभी प्रकार की शक्ति है। राज्यपाल के संदर्भ में, मृत्यु दंडादेश की दशा में क्षमा करने की शक्ति नहीं है, किंतु विधि द्वारा यदि निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है तो वह अप्रभावित है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को निम्नलिखित की बाबत क्षमादान की शक्ति है। पहला है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड के सभी मामले। राज्यपाल को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। दूसरा है, संघ और समवर्ती सूची के अधीन बनाई गई विधियों के अधीन अपराध। समवर्ती क्षेत्र की विधियों के बारे में राष्ट्रपति की अधिकारिता राज्यपाल के समवर्ती होगी। दंडादेश के बारे में पृथक उपबंध किया गया है। तीसरा है, मृत्यु दंडादेश में क्षमादान करने का प्राधिकार केवल राष्ट्रपति को है। यद्यपि राज्यपाल को मृत्यु दंड का क्षमादान करने की शक्ति नहीं है, किंतु उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 54 और दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 432 और 433 में कुछ परिस्थितियों में मृत्यु दंड को निलंबित करने, उसका परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति है। संविधान ने इस शक्ति को अछूता रखा है, इसलिए निलंबन, परिहार या लघुकरण के बारे में राज्यपाल को राष्ट्रपति की समवर्ती अधिकारिता होगी। छठा बिंदु है, प्रकीर्ण शक्तियां। कार्यपालिक शक्ति के प्रधान के नाते संविधान ने राष्ट्रपति में कुछ शक्तियां निहित की हैं, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं, जो संविधान के अनेकों उपबंधों में बिखरी हुई पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ, पहला है, राष्ट्रपति को अपने विषयों के संबंध में नियम और विनियम बनाने का संवैधानिक प्राधिकार है, जैसे कि प्रकार उसके आदेशों और लिखितों को प्राधिकृत किया जाएगा, भारत के लोक लेखाओं में धन जमा करना और वापस लेना, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी पदावधि और सेवा की शर्तें, संघ और संसद के सचिवालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, संसद और राज्य विधान मंडलों की सहवर्ती सदस्यता का प्रतिषेध। संसद के सदनों के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित प्रक्रिया, जो दोनों सदनों के सभापति और अध्यक्ष के परामर्श से बनाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवर्तित करने की रीति, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को संदेह परिलब्धियों का राज्यों में आवंटन, किसी ऐसी आकस्मिकता में जिसके लिए संविधान में उपबंध नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विनिर्दिष्ट किया जाना, उन विषयों का विनिर्दिष्ट किया जाना जिन पर भारत सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। इसी के अंतर्गत अगला बिंदु है, उसे अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति है। यदि वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है, यह बात अनुच्छेद 313 के क्लोज एक के परांतुक में लिखी हुई है। अगला बिंदु है, उसे व्यापक महत्व के किसी प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करने की शक्ति है। 1950 से अब तक ऐसे 10 निर्देश हो चुके हैं। अगला बिंदु है, उसे विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में प्रतिवेदन करने के प्रयोजन के लिए कुछ आयोग नियुक्त करने की शक्ति है। उदाहरण के लिए ये आयोग हैं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग, विधि आयोग, राजभाषा आयोग, अंतरराज्य परिषद। इसी के अंतर्गत अगला बिंदु है, उसे संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में या संघ द्वारा सीधे प्रशासित राज्य क्षेत्रों के संबंध में कुछ विशेष शक्ति है। ऐसे राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसी के प्रति उत्तरदायी प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली के राज्य क्षेत्रों के संबंध में अंतिम विधायी शक्ति है और वह ऐसे राज्य क्षेत्रों को लागू होने वाली संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि का भी निरीक्षण या संशोधन कर सकता है। यह बात अनुच्छेद 240 में लिखित है। अगला बिंदु है, राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों और असम की जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बावत कुछ विशेष शक्तियां हैं। संसद द्वारा संशोधन के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा या घोषित कर सकेगा कि कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगा या किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, तथा इसी प्रकार की अन्य शक्तियां भी उसे हैं। किसी भी राज्य में जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार जनजाति परिषद स्थापित की जा सकेगी। राज्यपाल द्वारा किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए बनाए गए सभी नियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत रखे जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी राज्य के राज्यपाल से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन दे और ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश दे सकता है। अगला बिंदु है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। संसद द्वारा रूपांतरण के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची बनाने और उसे अधिसूचित करने की शक्ति है। राज्य से संबंधित सूची की दशा में राज्यपाल से परामर्श करने की अपेक्षा है। यह बात अनुच्छेद 341 और 342 में लिखित है। राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबंधित रक्षोपायों के अन्वेषण करने और उनके कार्यकरण के संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह बात अनुच्छेद 338 में लिखित है। राष्ट्रपति राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आयोग की नियुक्ति किसी भी समय कर सकेगा और संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति तक करेगा। यह बात अनुच्छेद 339 के अंतर्गत लिखी हुई है। अगली शीर्षक है, जो कि सातवां बिंदु है, आपात शक्तियां। पूर्वगामी विवरण में राष्ट्रपति की समान शक्तियों का लेखा जोखा दिया गया है। इनके अतिरिक्त आपात से निपटने के लिए उसे कुछ असाधारण शक्तियां हैं जिन पर अलग से विचार करना उचित होगा। इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि राष्ट्रपति की साधारण शक्तियों का प्रयोग करने की परिस्थितियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है, राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में होने के आधार पर आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति है। इस उद्घोषणा का उद्देश्य भारत की सुरक्षा बनाए रखना है और अन्य बातों के साथ साथ उसका प्रभाव यह है कि संघ को राज्य के क्रियाकलाप पर या उस और राज्य के क्रियाकलाप पर या उनमें से ऐसे कार्य पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा जो सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण से प्रभावित हैं। उसके निमित्त किए गए कार्य के लिए हरेक मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व के बारे में है। अगला शीर्षक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। पहला बिंदु क, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75 क्लोज 3 में संहिताबद्ध है। इसमें यह लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल की यह संवैधानिक बाध्यता है कि विधानमंडल के निर्वाचित सदन का विश्वास खोते ही तुरंत त्याग पत्र दे। यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, चाहे वह मंत्री राज्यसभा के भी हों। सामूहिक उत्तरदायित्व के 2 अर्थ होते हैं। प्रथम यह कि किसी सरकार के सारे सदस्य उसकी नीतियों के समर्थन में एकमत होते हैं और उस एकमतता को लोक अवसरों पर प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि नीतियों का निर्धारण करते समय कैबिनेट की बैठक में उनके मत भिन्न भिन्न रहे हों। द्वितीय यह कि मंत्रीगण, जिन्हें कैबिनेट की बैठक में उन नीतियों के पक्ष या विपक्ष में बोलने का अवसर मिला था, उससे वे व्यक्तिगत रूप से और नैतिक रूप से उनकी सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। यह ठीक है कि पद त्याग न करके मंत्रिमंडल राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह सलाह दे कि वह विधानमंडल का विघटन कर दे, क्योंकि सदन निर्वाचन मंडल के मत का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अगला शीर्षक होगा, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 में समाविष्ट है, वह इस प्रकार से है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसका परिणाम यह है कि यद्यपि सामूहिक रूप से मंत्रीगण विधानमंडल को उत्तरदायी हैं, वे व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान के प्रति उत्तरदायी होंगे और विधानमंडल का विश्वास उन्हें प्राप्त होने पर भी उन्हें पदच्युत किया जा सकेगा। अन्य मंत्रियों को व्यक्तिशः पदच्युत करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह उपलब्ध रहेगी, इसलिए राष्ट्रपति की यह शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री की अपने सहकर्मियों के विरुद्ध शक्ति होगी, जैसा कि इंग्लैंड में है, जिससे वह अवांछित सहकर्मी से छुटकारा पा सकता है, चाहे उस मंत्री को लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। सामान्यतया इस शक्ति का प्रयोग करके प्रधानमंत्री अपने अवांछित सहकर्मी से पद त्याग करने के लिए कहता है और वह तदनुसार त्याग पत्र दे देता है, जिससे कि उसे पदच्युति का कलंक न लगे। अगला शीर्षक है विधिक उत्तरदायित्व। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, हमारे संविधान में विधिक उत्तरदायित्व का इंग्लैंड वाला सिद्धांत अंगीकार नहीं किया गया है। इंग्लैंड में सम्राट बिना किसी मंत्री के हस्ताक्षर के कोई लोक कार्य नहीं कर सकता। यदि जो कार्य किया गया है उससे देश की किसी विधि का उल्लंघन होता है और किसी व्यक्ति के पक्ष में वाद हेतु का सृजन होता है, तो न्यायालय में मंत्री उत्तरदायी होगा। हमारा संविधान अभिव्यक्त रूप से यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति केवल मंत्रियों के माध्यम से ही कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति पर ही यह छोड़ दिया गया है कि वह इस बात के नियम बनाए कि किस प्रकार उसके आदेश आदि अधिप्रमाणित किए जाएंगे। संविधान में यह उपबंध भी है कि कार्यपालिका के प्रधान को मंत्रियों ने क्या सलाह दी थी, इसके विषय में न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकेंगे। यदि राष्ट्रपति का कोई कार्य उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भारत सरकार के किसी सचिव द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है, तो उस कार्य के लिए कोई मंत्री उत्तरदायी नहीं हो सकता, चाहे वह कार्य मंत्री की सलाह पर ही किया गया हो। अगला शीर्षक है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री का विशेष स्थान। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की मेहराब की चाबी है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में यह अभिव्यक्त रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अतएव जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है, तो अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकते। इंग्लैंड में लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री की स्थिति का वर्णन करते हुए उसे समान व्यक्तियों में प्रथम, दैट इज प्राइम्स इंटर पेयर्स, कहा है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है, सभी सम्राट के सलाहकार हैं, सभी संसद को एक सी रीति से उत्तरदायी हैं। अभिसमय और प्रथा के आधार पर प्रधानमंत्री को विशेष स्थान मिला हुआ है। प्रधानमंत्री की स्थिति हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, विधानमंडल के निर्वाचित सदन में प्रधानमंत्री बहुमत वाले दल का नेता होता है। दूसरा, उसे अन्य मंत्री चुनने की, उनमें से किसी को भी पदच्युत करने की, सम्राट को सलाह देने की या उनमें से किसी को पद त्याग करने की अपेक्षा करने की शक्ति है। तीसरा, मंत्रियों के कामकाज का आवंटन भी प्रधानमंत्री का कृत्य है। वह किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरित कर सकता है। चौथा, वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है, उसकी बैठकें बुलाता है और उसका सभापतित्व करता है। पांचवा, किसी भी मंत्री के पद त्याग से रिक्ति हो जाती है, किंतु प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग से मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। छठा, प्रधानमंत्री का स्थान सम्राट और मंत्रिमंडल के मध्य है। कोई भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित मामलों में सम्राट तक पहुंचने का अधिकार रखता है, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण पत्रादि विशेषकर नीति संबंधी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। भारत में ये सब विशेष शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हैं, क्योंकि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली से संबंधित सभी अभिशमय यहां लागू होते हैं। इनमें से कुछ तो संविधान में ही संहिताबद्ध हैं, जैसे राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने की शक्ति अनुच्छेद 75 क्लोज 1 में है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार साधन के रूप में कार्य करने के बारे में अनुच्छेद 78 में यह उपबंध है। अनुच्छेद 78 में दिया गया उपबंध कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संघ में कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यदि किसी मंत्री ने कोई सलाह प्रधानमंत्री को दी है और मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखी है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए निर्दिष्ट करे। भारत में लिखित संविधान के माध्यम से मंत्रिमंडल प्रणाली की एकता प्रवृत्त कराई जाती है। और अगला मुख्य शीर्षक है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव और कैबिनेट। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित राष्ट्रपति है जो नियत समय के लिए पद धारण करता है और मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की मर्यादाओं में कार्य करता है। फिर भी हमारे संविधान में उसे बहुत अधिक शक्तियां दी गई हैं। यह बात राजनीति शास्त्रियों के लिए आकर्षक का विषय रही है। संसदीय शासन प्रणाली में असली कार्यपालिका की पदावधि विधानमंडल की इच्छा पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। वहां राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जो नियत अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होता है। उसकी पदावधि विधानमंडल के अधीन नहीं है और वह अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह चाहे तो मंत्रियों की सलाह से कार्य कर सकता है, किंतु उसकी नियुक्ति उसके द्वारा परामर्शदाताओं के रूप में की जाती है और वे उसी को उत्तरदायी होते हैं, विधानमंडल को नहीं। इंग्लैंड के नमूने वाली संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान जो कि सम्राट होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। असली कार्यपालिका शक्ति तो मंत्रिमंडल में होती है, जो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा बनाया जाता है और जो अपनी पदावधि और कार्यों के लिए विधानमंडल के निर्वाचित सदन को उत्तरदायी होती है। अगला शीर्षक है भारत के राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति और इंग्लैंड के सम्राट से तुलना। भारत गणराज्य है, इसलिए यहाँ अनुवंशिक राजा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ एक निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है। उसकी पदावधि अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति पहले से नियत वर्षों के लिए है। वह एक बात में अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है कि उसे भी विधानमंडल महाभियोग की न्यायिकल्प प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकता है। दूसरी ओर वह इंग्लैंड के राजा से अधिक मेल खाता है, क्योंकि राजा के समान उसे अपने प्राधिकार से कोई कृत्य नहीं करना है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति में निहित सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग वह विधानमंडल को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर ही कर सकता है, जैसा कि इंग्लैंड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति तथाकथित मंत्रिमंडल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है, कांग्रेस के प्रति नहीं। हमारे राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने संघ और राज्य के विधानमंडलों से गठित निर्वाचक गण द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करने के बाद अमेरिकी नमूने को क्यों हटा दिया, इसका यह स्पष्टीकरण दिया जाता है। अस्थायित्व और उत्तरदायित्व का समन्वय करने में उन्होंने उत्तरदायित्व को महत्व दिया और अमेरिकी प्रणाली के आधार स्तंभ उत्तरदायित्व के कालिक निर्धारण के सिद्धांत के स्थान पर दैनिक निर्धारण के सिद्धांत को अधिमान दिया। अमेरिकी प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होना अनिवार्य है। कुछ आधुनिक अमेरिकी लेखकों के अनुसार विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय का न होना अमेरिकी राजनैतिक प्रणाली को दुर्बल बनाता है। भारत 150 वर्ष की दास्ता से मुक्त हुआ था, उसे ऐसी स्नेहिल शासन प्रणाली चाहिए थी जिसमें कम से कम घर्षण हो और जो देश के बहुमुखी विकास की गति दे सके। इस ध्येय से मंत्रिमंडलीय या संसदीय प्रणाली भारत के लिए राष्ट्रपति प्रणाली की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है। भारत को इसका पहले से अनुभव भी था। एक प्रश्न जो विवाद का विषय है हाल ही में उपस्थित किया गया है, क्या संविधान राष्ट्रपति पर यह बाध्यता डालता है कि वह सभी विषयों पर केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करेगा? इस प्रश्न पर विवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक भाषण से प्रकाश में आया। वह भाषण इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के एक समारोह में 28 नवंबर 1960 को दिया गया था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों का अध्ययन करने पर बल देते हुए यह कहा कि संविधान का कोई उपबंध स्पष्ट शब्दों में यह अधिकथित नहीं करता कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। यह संप्रेषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही उस संप्रेषण के विपरीत था जो उन्होंने तब किया था जब वे संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते प्रारूप संविधान के सुसंगत उपबंध पर चर्चा समापन कर रहे थे। अगला शीर्षक होगा भारत में राष्ट्रपति की प्रास्थिति। राजनीतिज्ञों और विद्वानों ने इस विवाद के एक न एक पक्ष का समर्थन किया और अपने पक्ष की पुष्टि में संविधान के विभिन्न उपबंधों को यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया कि हमारे संविधान के अधीन राष्ट्रपति अलंकारिक प्रधान नहीं, या वह इंग्लैंड के सम्राट के समान संवैधानिक प्रधान ही है। जब यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय में उपस्थित हुआ तो न्यायालय ने उपयुक्त दूसरा मत अपनाया। सहायता और सलाह शब्दों को डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में दिए गए निर्वचन का अवलंब होते हुए राम जवाया के वाद में यह कहा गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 क्लोज 1 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान बनाया गया है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रियों में या मंत्रिमंडल में निहित है। राज्यों के शासन में भी यही उपबंध है। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का कार्य करती है। अतएव भारत के संविधान में इंग्लैंड जैसी ही संसदीय कार्यपालिका प्रणाली है। मंत्रिपरिषद जो विधानमंडल के सदस्यों से मिलकर बनती है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान वह डोरी है जो राज्य की विधायिका को कार्यपालिका से जोड़ती है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्वचन अपने पश्चातवर्ती निर्णयों में दोहराया। अतएव न्यायिक निर्वचन द्वारा यह सुस्थिर हो चुका था कि राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। राव बनाम इंदिरा वाद में न्यायालय ने एकमत से यह कहा, संविधान सभा ने शासन की राष्ट्रपति प्रणाली नहीं चुनी है। अगला शीर्षक है 42वां संशोधन। इंदिरा सरकार ने यह प्रयत्न किया कि संविधान का संशोधन करके इस प्रश्न को संदेह से मुक्त कर दिया जाए। अतएव संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 74 क्लोज 1 का संशोधन किया गया, जो इस प्रकार से था, राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अगला शीर्षक है 43वां और 44वां संशोधन। यद्यपि जनता सरकार चाहती थी कि मौलिक परिवर्तन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने किए हैं उन्हें मिटा दिया जाए, फिर भी उसने अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के उपयुक्त संशोधन को नहीं छेड़ा है। 44वें संशोधन ने 1976 के उपबंध में इतना सा परिवर्तन किया है कि उसमें एक परंतुक जोड़कर राष्ट्रपति को यह अवसर दिया है कि वह सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा दे। किंतु यदि मंत्रिपरिषद पहले वाली सलाह की ही पुष्टि करती है तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए आबद्ध है। 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 74 क्लोज 1 इस प्रकार है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति अपने पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में इस बात पर विवाद करना कि क्या भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने की शक्ति है या नहीं, अर्थहीन है। 1976 और 1978 में संविधान का संशोधन करके उस विवाद को समाप्त कर दिया गया है जो डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में विचार के लिए उपस्थित किया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि भारत के संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति पर बाध्यता डाले कि वह प्रत्येक अवसर पर और सभी परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करे। साथ ही इस संशोधन ने इस बात को आत्यंतिक रूप से रखकर भूल की है, क्योंकि उन परिस्थितियों को आरक्षित नहीं किया गया है जिनमें प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मिलेगी, उदाहरण के लिए मृत्यु की दशा में, या प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह अनुचित है। इंग्लैंड के अभिशमय के अनुसार जब कोई प्रधानमंत्री संसद में बार बार हार जाता है और विघटन की मांग करता है तो यह अनुचित माना जाता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में विद्यमान मंत्रिपरिषद तुरंत विघटित हो जाती है, इसलिए अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में 1976 और 78 में किए गए संशोधनों के होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति को नए प्रधानमंत्री को चुनने के विषय में बिना मंत्रियों की सलाह के कार्य करने की शक्ति होगी। यह ठीक है कि जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद विद्यमान नहीं रहती। लोकसभा में हारे हुए प्रधानमंत्री द्वारा विघटन की मांग से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिपरिषद विद्यमान नहीं है। यथा संशोधित अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को हारे हुए मंत्रिपरिषद के अनुरोध पर कार्य करना होगा, चाहे ऐसा अनुरोध अनुचित ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए वह हारने का दूसरा अवसर भी हो सकता है। ऐसा होने पर भारत की स्थिति इंग्लैंड में प्रचलित मंत्रिमंडल शासन के सिद्धांतों से भिन्न होगी। अगला मुख्य शीर्षक है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद उन पदों में से है जिसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। वह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है और इस रूप में उसके कर्तव्य निम्नलिखित हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और दूसरा उन कृत्यों का निर्वहन करना जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किया अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए हों। यह बात अनुच्छेद 76 में लिखित है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। इंग्लैंड में वह सदस्य होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह बात अनुच्छेद 88 में लिखित है। अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों में विशेषाधिकार है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। उसकी वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होती हैं। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। राष्ट्रपति ने यह अवधारित किया है कि महान्यायवादी को 5,000 रुपये प्रति मास का प्रतिधारण शुल्क दिया जाएगा, किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न सरकारी सेवक। अगला मुख्य शीर्षक है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत सरकार में एक दूसरा महत्वपूर्ण पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, संघ और राज्य दोनों स्तरों का। यह बात अनुच्छेद 148 में लिखित है। जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधान मंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। संक्षेप में वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होगा। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से कर सके, इसलिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि उसका पद कार्यपालिका के नियंत्रण में और अधीनस्थ नहीं रहना चाहिए। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, शासन की संसदीय प्रणाली की नींव कार्यपालिका का विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होना और इस नियंत्रण का सार विधान मंडल द्वारा वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली में है। विधान मंडल अपने कृत्यों का निर्वहन उचित रूप से कर सके, इसलिए यह आवश्यक है कि विधान मंडल को ऐसे अभिकरण से सहायता मिलनी चाहिए जो कार्यपालिका से मुक्त है और जो सरकार की वित्तीय संव्यवहारों की समीक्षा करेगा और उस समीक्षा के परिणामों को विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। भारत शासन अधिनियम के अधीन भी भारत का एक महालेखा परीक्षक था। उस अधिनियम में महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध किया गया था कि वह उसी रीति में और उसी आधारों पर पद से हटाया जा सकेगा जैसे फेडरल न्यायालय का न्यायाधीश। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के नमूने पर ही बनाया गया है। सेवा की शर्तें। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता सुनिश्चित की गई है। पहला बिंदु है, यद्यपि नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार साबित कदाचार या असमर्थता हो सकेंगे। वह इस साधारण नियम का अपवाद है कि संघ के सभी सिविल सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ख, उसके वेतन और सेवा की शर्तें कानूनी होंगी, अर्थात संसद द्वारा विधि द्वारा अधिकथित, और उसकी पदावधि के दौरान उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस शक्ति के अधीन संसद ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 अधिनियमित किया है। 1976 में यथा संशोधित इस अधिनियम में यह उपबंध है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष होगी, किंतु 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर 6 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व पद रिक्त हो जाएगा। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा और उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। यह बात अनुच्छेद 148 क्लोज नंबर 1 और 124 क्लोज 4 में लिखित है। दूसरा, उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा, जो अब 30,000 रुपये है, 1/1/1996 से प्रभावी। और तीसरा, सेवानिवृत्ति पर उसे 15,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मिलेगी। चौथा, अन्य विषयों में उसकी सेवा की शर्तें उन्हीं नियमों में अवधारित होंगी जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को लागू होती हैं। पांचवा, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण करने का पात्र नहीं होगा, जिससे कि उसे संघ या राज्य की कार्यपालिका को प्रसन्न करने के लिए कोई लालच न हो। छठा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारी वृंद के वेतन और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और इन पर मतदान नहीं होगा। यह बात अनुच्छेद 148 में लिखित है। अन्य बातों के विषय में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्थिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसी होगी। अगला शीर्षक है कृत्य और शक्तियां। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा विहित किए जाएं। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 अधिनियमित किया है। 1976 में संशोधित इस अधिनियम द्वारा उसे संघ के लेखाओं को संकलित करने के संविधान के पूर्व के कर्तव्य से मुक्ति मिल गई है। राज्य भी इसी प्रकार के पूर्व अनुमोदन से विधान बना सकते हैं और राज्य स्तर पर लेखाओं को संपरीक्षा से अलग कर सकते हैं तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लेखा तैयार करने के विषय में राज्य और संघ दोनों के स्तर पर मुक्ति दे सकते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के विषय में इस अधिनियम के तात्विक उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, भारत और प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन की, क्या ऐसा कोई व्यय विधि के अनुसार है। दूसरा, इसी प्रकार संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन। तीसरा, संघ या राज्य के विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण के हानि और लाभ लेखाओं की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन। चौथा, संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा, जिससे कि उसका यह समाधान हो जाए कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के लिए पर्याप्त जांच करने के लिए इस निमित्त नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। छठा, संघ और राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की, सरकारी कंपनियों की, अन्य निगमों या निकायों की, जब ऐसे निगमों या निकायों से संबंधित विधि द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा और उस पर प्रतिवेदन। अगला बिंदु होगा समकक्ष ब्रिटिश पदधारी से तुलना। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, लेखा तैयार करने का कृत्य भारत शासन अधिनियम 1935 का अवशेष चिन्ह था, जिसके लिए ब्रिटिश प्रणाली में कोई पूर्व दृष्टांत नहीं था। ब्रिटेन की प्रणाली में लेखा विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से लेखा तैयार करने के कृत्य को पृथक करने के लिए विधान बनाकर इस पद को इस विषय में उसके समकक्ष ब्रिटिश पदाधिकारी के समान बना दिया गया है। किंतु अभी भी एक महत्वपूर्ण बात में अंतर बना हुआ है। उसके पदाभिधान से यह दर्शित होता है कि उससे नियंत्रक और लेखा परीक्षक दोनों के ही कृत्य करने हैं, किंतु अभी तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षक का ही कर्तव्य कर रहा है। नियंत्रक के कृत्यों का प्रयोग करते हुए इंग्लैंड का नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक धन की प्राप्ति और उसके निर्गम का भी नियंत्रण करता है तथा उसका यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि समस्त लोक राजस्व बैंक ऑफ इंग्लैंड में खजाने के खाते में जमा किए जाएं और उसमें से कुछ भी विधिक प्राधिकार के बिना संदत्त नहीं किया जाए। इसलिए वहाँ पर शासन सार्वजनिक घोषणा से नियंत्रक के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना कोई धन प्राप्त नहीं कर सकता, और यह प्राधिकार वह तभी देता है जब उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यय के लिए उचित विधिक प्राधिकार है। सार्वजनिक धन के निर्गम पर नियंत्रण की इस प्रणाली से अपराधिकृत प्रयोजन के लिए धन निकलना शुरू हो जाता है, और साथ ही संसद द्वारा दिए गए अनुदान के आधिक्य में व्यय भी नहीं हो सकता।